ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम के दूसरे अभियान पर विशेष मॉड्यूल के एक वेबसाइट लॉन्च की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में हरित पहल का उद्घाटन किया और प्लास्टिक के त्याग करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया और लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में मॉनसून से जुड़ी तैयारियों के लिए साकेत इलाके का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपने संकल्प को मजबूत करने और पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और सामूहिक प्रयासों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरती को हरा भरा बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि सभी जीवित प्राणियों का कल्याण सबके स्वास्थ्य से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी के लिए हरियाली, स्वच्छ और अधिक लचीले भविष्य के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार के सतत परिवहन पहल के अंतर्गत 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जो स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देंगी और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा पर विशेष वीडियो भी साझा किया। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की।
प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है।
पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है।
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये पौधा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के एक भाग के रूप में लगाया गया था, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के 700 किलोमीटर क्षेत्र में पुनः वनारोपण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। इसका उद्देश्य वनारोपण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के साथ अरावली की जैव विविधता को भी बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु लचीलापन को सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करके लाभान्वित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ के वीर माताओं और बहनों ने उपहार में दिया था। गुजरात की अपनी हाल की यात्रा को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिंदूर का पौधा देश की नारी शक्ति की बहादुरी और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम के दूसरे अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन लाइफ के लिए इको क्लब की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल सहित एक पेड़ माँ के नाम के दूसरे अभियान पर विशेष मॉड्यूल और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। श्री प्रधान ने कहा कि देश का कार्बन उत्सर्जन वांछनीय सीमा से नीचे है। उन्होंने प्रत्येक जीवित प्राणी के अस्तित्व के लिए पेड़ों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
हमें पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, जीव जंतु को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही अत्यंत आवश्यक की चीज है। तो भारत दुनिया की प्रदूषणकारी देशों में नहीं है, हमारी कार्बन एमिशन डिजायरेबल लिमिट के काफी नीचे है, उसके बावजूद भारत ने प्रतिज्ञा किया है 2070 तक हम भारत में जीरो कार्बन एमिशन करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में हरित पहल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक का त्याग करने का भी संकल्प लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा को पर्यावरणीय जागरूकता सुंदरता का प्रतीक बनाए जाने की घोषणा की।
इस पहल के तहत विधानसभा परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें फूलदार और सजावटी पेड़, सुंदर झाड़ियां, ताड़ के पेड़ और ग्राउंड कवर्स शामिल हैं। इसके साथ ही खुशबूदार पौधों की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे विधानसभा परिसर का वातावरण सुंदर ही नहीं बल्कि सुगंधित और ताजगी पूर्ण भी बनेगा। श्री गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा को एक आदर्श उद्यान के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे राजधानी की अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिल सके।
आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और आज हम संकल्प लेंगे प्लास्टिक को त्यागेंगे और अपने पर्यावरण को सुंदर महकदार बनाने के लिए परिसर को सिटी ऑफ गार्डन्स की तरह, फ्लावर्स की तरह खुशबूदार, दिल्ली में जाना जाए कि दिल्ली के विधानसभा का परिसर एक कलरफुल फूलों से पूरी तरह से आच्छादित क्षेत्र है और मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप भी पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ जरूर लगाएं।
विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने दिल्ली वासियों से पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मेट्रो को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि ये ग्रीन बिल्डिंग नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन कटौती के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। DMRC को ये पुरस्कार दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित विश्व जैव ईंधन एक्सपो के अवसर पर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने चाणक्यपुर स्थित नेहरू पार्क में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चंद्रा ने कहा कि इस पर्यावरण दिवस में योगदान का सबसे प्रभावशाली तरीका एक पेड़ लगाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। इसका संचालन विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला ड्राइवरों द्वारा केवल महिला यात्रियों के लिए किया जाएगा। NCRTC के अनुसार इसके तहत पीक आवर्स के दौरान लगभग 10 इलेक्ट्रिक बाइकें तैनात की जाएंगी, जो मेरठ साउथ स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में महिला यात्रियों को कम किराए पर कनेक्टिविटी की सेवा प्रदान करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि एम्स अस्पताल की सुविधाओं में पिछले 10 सालों में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, जिसमें सालाना लगभग 5 लाख OPD मामले आते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यहां पूरे भारत में हजारों मरीज रोजाना आते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतीक्षालय मरीजों के साथ आने वालों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है।
एम्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हजारों पेशेंट डेली आते हैं। धानुका ग्रुप को बहुत बधाई देती हूँ, जिनके वजह से CSR में आज ये वेटिंग हॉल बन पाया है। बहुत ही बड़ा वेटिंग हॉल है, क्योंकि जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट तो एडमिट हो जाता है रूम में या ICU में, पर अटेंडेंट के बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर वो यहाँ वहाँ कमर्शियल कोई कमरा देखता है, कभी सड़क पे बैठता है, कभी गलियारे में। ये वेटिंग हॉल उन लाखों पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कल से अगले महीने की 13 तारीख तक दिल्ली में ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह का आयोजन करेगा। एक महीने से अधिक तक चलने वाले इस समारोह में 45 से अधिक नाटक दिखाए जाएंगे। 38 दिन तक चलने वाले समारोह में प्रतिदिन दो बार नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें पहला मंचन दोपहर 3:30 बजे और दूसरा शाम 7 बजे से होगा। इस बार समारोह में अजय शुक्ला कृत ताजमहल का टेंडर, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे, धर्मवीर भारती की अंधा युग, अभिज्ञान शाकुंतलम, लैला मजनू, बाबूजी और समुद्र मंथन जैसे नाटक शामिल हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नई दिल्ली में नीति निर्माण के लिए वैकल्पिक डेटा स्रोतों और अग्रणी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यशाला नीति आयोग और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य हितधारकों के बीच समझ को बढ़ाना और नीति निर्माण में वैकल्पिक डाटा स्रोतों और अग्रणी प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक दुकान में आज शाम भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। विभाग के अनुसार अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण और नुकसान का आकलन अभी स्पष्ट नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने साकेत इलाके में एक नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। श्री वर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम इन 3 महीनों में हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली को जल भराव से निजात दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं।
देखिए, 3 महीने से जब से सरकार बनी है युद्ध स्तर पर सारे हमारे मुख्यमंत्री महोदया जी, सारे मंत्री, सारे सड़क पर हैं। हमारा लक्ष्य है मॉनसून से पहले 80-90% तक सारी गाद को निकाले ताकि ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इससे दिल्ली को निजात दिलाए।
संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्वच्छ परिवहन की ओर तेजी से बढ़ते कदम बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इस क्षेत्र के मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई कॉमर्स संस्थानों को सार्वजनिक परिवहन के मौजूदा बेड़े में सीएनजी, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ऑटो रिक्शा शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है ताकि इन विषयों पर हिंदी लेखनी और शोध को प्रोत्साहन मिल सके। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सहायक और एसोसिएट प्रोफेसरों सहित कार्यरत या सेवानिवृत्त प्रोफेसर इन विषयों पर पुस्तकें लिख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इच्छुक प्रतिभागियों को 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में अपने नामांकन भरने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम के दूसरे अभियान पर विशेष मॉड्यूलर एक वेबसाइट लॉन्च की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में हरित पहल का उद्घाटन किया और प्लास्टिक के त्याग करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया और लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में मॉनसून से जुड़ी तैयारियों के लिए साकेत इलाके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।